الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم سورة المریم پڑھیں گے. سورة مریم مکی سورت ہے اور روایات کے مطابق ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں وہ مشہور قصہ کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے اس سورت کی آیات تلاوت فرمائی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت پہلے سے نازل ہو چکی تھی. چونکہ یہ مکی سورت ہے اس لیے اس کا جو مین تھیم ہے وہ توحید ہے، اور توحید میں بھی خاص طور پہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ جو کہ عیسائی مانتے ہیں، اس کا رد ہے. قریش مکہ کی بھی باتوں کا رد کیا گیا ہے. مگر بیسیکلی آپ دیکھیں گے، جیسے آپ نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مریم نام سے صورت میں یقیناً حضرت مریم کا ذکر ہوگا. دوسری جگہ بھی قرآن میں ان کا ذکر آ چکا ہے، مگر یہاں پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ ان کی پورے بات کو سمجھ سکیں گے، کیا ان کے اوپر گزری جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ کیسی ہستی تھی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی تھی. اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی قصہ، اور اکثر آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات آتی ہے وہیں یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش کی بات آتی ہے. بلکہ جیسے سورہ آل عمران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ پڑھ چکے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پہلے آیا ان کی خوشخبری کا، اور اس کے بعد حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں اور دونوں میں معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ہی معجزہ تھی، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ان دونوں کے بارے میں بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، یعنی اس یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی یعنی زکریہ علیہ السلام کی بیوی، وہ حضرت مریم کی بہن تھی، یہ بھی آتا ہے. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت مریم کی خالہ تھی، یعنی یہ خالو لگتے تھے زکریہ علیہ السلام، اور یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے. گو کہ معراج والی حدیث کے اندر ان دونوں کو، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، خالہ زاد کہا گیا ہے، مگر یہ محاورتاً بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے آبا میں سے کوئی ہو تو اس کو چچا کہہ دیا جاتا ہے، باپ کہہ دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سکا باپ ہو یا سکا چچا ہو. تو بہر کیف ان کی رشتہ داری بنتی تھی، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ حنہ جو تھی، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، وہ بہن تھی عیشا کی. عیشا جو تھی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر شروع میں 1 سے 15 تک جو آیات ہیں ان میں زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد 16 سے 40 تک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. اس کے بعد 41 سے آگے 60 یا 63 تک ابراہیم علیہ السلام کا اور 6 انبیاء کا اور ذکر ہے، اور ان کی بعض صفات ایسی ہیں جو ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں، اور وہی صفات اگر کوئی بھی اور انسان اپنا لیتا ہے تو وہ بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. تو آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اس سورت کو एक तो मरियम लफ्ज का मतलब भी आपको बता दूं, मरियम आबिदा के लिए आता है, बहुत ज्यादा इबादत गुजार। तो आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 1 से 34 तक देखेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा आज हमारे सामने आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरती है इस सूरत के अंदर, इस तरह से कि इतनी प्यारा रिदम आ रहा है, हर जो एंड है आयत का, सुभान अल्लाह, वो कैसे आ रहा है, ज़करिया, शकिया, खफिया, वलिया, यानी इतनी राइमिंग और इतनी ब्यूटी है इस सूरत के अंदर कि सुनने में भी आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। दूसरी सूरत के बारे में मशहूर ज्यादातर ये किया जाता है कि औरत वो अपनी प्रेगनेंसी में इस सूरत को पढ़े, आसानी होगी डिलीवरी में, ऐसा कुछ भी हदीस से नहीं है। ठीक है, जो बात कुरान में है वो ये है कि कुरान शिफा है। शिफा मैंने आपको बता दिया था, सूरह इसरा में आया था कि शिफा है, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, सबके लिए कुरान शिफा है। कुरान पाक को कहीं से भी पढ़ लें, उसमें शिफा ही है। ठीक है, अब कुछ लोग अगर कह देंगे कि भाई इस सूरत को इस तरह पढ़ लो, इस तरह वो, लेकिन याद रखिएगा हदीस में कुछ नहीं है ऐसी चीज। आप कहीं से भी कुरान पढ़े, आप इस सूरत को पढ़े, अगर आपको इससे तसल्ली मिलती है, जो लोग प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी की बात आई है, डिलीवरी की बात आई है, तो अगर आपको उससे कुछ सब्र की तलकीन मिलती है, अगर आपको उससे कुछ दिलासा मिलता है, तो आप पढ़ लें। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई डिलीवरी के अंदर इसमें आसानी होगी तो लिहाजा इस सूरत को ही पढ़ते रहना है आपने, इस तरह की चीजें बना के खुद ना सही नहीं होता, क्योंकि बाज दफा लोग फिर उस पर अकीदा रख लेते हैं, और फिर होता ही है कि अगर वैसा ना हो तो फिर वो कहते हैं देखो जी हमने तो ये पढ़ा था और इसके बारे में तो ये कहा गया था। तो अगर आप किसी को भी कुछ चीज कहते हैं तो कुरान कहीं से भी पढ़ लें, अगर ये जरूर बता दीजिए, अगर आप किसी को कहें भी कि मसलन है बीमारी के लिए ये पढ़ लें, या इस, तो बता दें कि ये कोई हदीस में नहीं है, मसलन मेरा अपना तजर्बा है, मुझे ऐसे लगा था, मेरे साथ ये हुआ था, मैं ये चीज पढ़ती थी, लेकिन इसको दीन का हिस्सा ना बनाएं, फिर पूरा का पूरा कुरान ही शिफा है। ठीक है, अच्छा जी, तो इस सूरत को अगर हम इस तरह से डिवाइड कर लें ना थोड़ा सा, आप अगर इसको देख लें कि शुरू के अंदर जो मैंने आपको जैसे बताया कि यहया अलैहिस्सलाम की मौजूदाना पैदाइश, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदाना पैदाइश है, ये फर्स्ट पार्ट कर लें, दो पैदाइशों का जिक्र है, मिरेकल बर्थ हुई है, फिर मिड में सूरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा और अम्बिया का, कुछ अम्बिया 6 अम्बिया का जिक्र है, फिर एंड में मुशरिकीन मक्का से खिताब है, और आखिर में इस सूरत की बड़ी जबरदस्त बात है कि देखें शुरू के अंदर औलाद की बात, इसमें ना औलाद की बहुत बात है, बेबी शायद इसलिए लोग कहते हो कि औलाद की बहुत बात है इसमें, औलाद के पैदा होने की। तो आखिर में आके अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि उसको कोई औलाद नहीं है, औलाद इंसान की जरूरत है। और ये आप देख लें कि जिस वक्त ये सूरत उतरी है ना, उस वक्त मुसलमानों के लिए हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए क्योंकि अभी नया नया इस्लाम शुरू हो रहा है, बहुत ज्यादा परसिक्यूशन, बहुत ज्यादा जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, गुलामों लौंडियों को कैसे मारा जा रहा था, कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, तो बहुत सफरिंग थी, और ऐसे नहीं लगता था कि ये, देखिए जिस वक्त जो मुश्किल वक्त होता है ना, इंसान को लगता है ये कभी भी नहीं खत्म होना, ये कैसे खत्म होगा, ये हालात कैसे सही होंगे, ये सब कैसे ठीक होगा, इंसान इतना बेचैन और इस कदर परेशान हो जाता है मुश्किल हालात में, और खास तौर पे आप खुद सोचें कि ऐसी कोई चीज चल रही हो कि हर तरफ ईमान वालों को ऐसा सताया जा रहा है कि उनका जीना दूभर कर दिया जा रहा है, आप थोड़ा सा अपने आप को उन हालात में जरा ले जाके खड़ा करके देखें कि इंसान का चैन और सुकून खत्म होके रह जाता है, कि आपके सामने कोई शहीद हो गया है इतने टॉर्चर के बाद, उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, एक औरत को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, किस तरह से उनको ऊंट से बांध के और दोनों टांगों को और चीर दिया गया, बीच में नेजा मार दिया, इस तरह के टॉर्चरस बातें अपने इर्द गिर्द कोई सुन ले तो उसको तो रात को नींद ही ना आए कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और कैसे ये सही होगा, ये तो पता नहीं कभी सही हो सकता है कि नहीं। उस हालात के अंदर इस सूरत का उतरना क्या बताता है, व्हाट्स द मैसेज? आप ये मैसेज को समझिएगा कि ये इतना बड़ा मैसेज है ना कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, उसकी कुदरत में है, उसकी ताकत में है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद अल्लाह सुब्हान ताला, नथिंग। तो क्यों आप परेशान होते हो, क्यों आप गम करते हो? जो अल्लाह बगैर बाप के बच्चा दे सकता है, जो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, इतने जयीफ हो चुके हैं, उनको औलाद की बशारत दे सकता है, उनको ऐसा बच्चा दे सकता है, अल्लाह ताला हर हालात को भी सही कर सकता है। यानी आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज हो जाना जो जो कि ह्यूमनली आप कहते हैं ना कि इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है, जिसको आपका जहन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो खरके आदत, सुपर नेचुरल चीजें, वो जब सामने हो रही हैं इस सूरत के अंदर, तो अल्लाह ताला तुम्हारी भी मदद कर सकता है, अल्लाह ताला तुम्हारे भी हालात बदल सकता है। अल्लाह अकबर। और इस सूरत में आप देखेंगे ये भी है कि दीन की तालीम अपने बच्चों तक पहुंचाना, अपनी नस्लों तक पहुंचाना, अगर आप अपनी नस्लों के लिए बेस्ट चाहते हैं तो उन तक दीन को पहुंचाएं। आज के खास सबक में खास तौर पे हम देखेंगे कि जैसे औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए और किस तरह से अंबिया का तरीका था। तो देखते हैं सूरत को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ हा या आइन सौद, हरूफ मुकत्तआत ब्रोकन लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रही है। और आपको पता है कि और भी कई सूरतें हम पढ़ चुके हैं इसी तरह हरूफ मुकत्तआत के साथ। तकरीबन 29 सूरतें जो कुरान पाक में आई हैं, उनमें से आप किसी सूरत को इस तरह 5 लेटर्स के साथ नहीं स्टार्ट होता देखेंगे। अलिफ लाम मीम है जैसे, यासीन है जैसे, तोहा है जैसे, कोई दो कोई तीन कोई, लेकिन ये 5 लेटर्स के साथ सिर्फ ये सूरत स्टार्ट हुई है। एक और भी सूरत शुरा में, लेकिन उसमें 2 आयत्स में ब्रोकन है, एक पहले है फिर उसके बाद में दूसरी आयत में, इस तरह इकट्ठे जो जमा करके है ना वो इस सूरत के अंदर है। इनका माना जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनका माना अल्लाह ताला ही जानता है कि इनका माना क्या है। अक्सर हरूफ मुकतात के बाद आप देखेंगे तकरीबन मेरे ख्याल 24 ऐसी सूरतें हैं जिनमें उनके बाद कुरान पाक का ही जिक्र है, वल कुरान अल हकीम, वल किताबिल मुबीन, इस तरह से। मगर 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं है। बाज ने कहा है ये रहमती रब्बिक, ये कुरान पाक की बात है, वज़कुर रहमती रब्बिक की कुरान पाक की बात है, मगर ज्यादा यही लगता है कि इस सूरत में आगे कुरान की बात नहीं है। तो 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें कुराने पाक का फिर जिक्र एंड में आता है, इस तरह से हरूफ मुकत्तआत के बाद नहीं आता। ठीक है, तो हरूफ मुकत्तआत जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि ये एक चैलेंज है कि ये इन हरूफ के साथ, ये कुरान नाजिल हुआ इन्हीं हरूफ के साथ, ये कुरान के अंदर आयते हैं, तो तुम भी कोई आयत ऐसी बना के ले आओ। जिक्रु रहमत रब्बी का आबदा हु जकरिया, जिक्र है तेरे रब की रहमत का अपने बंदे जकरिया अलैहि सलाम पे। यानी जिक्र मतलब क्या, याद दहानी है, रिमेम्बरेंस जिसको हम कहते हैं। रहमत रब्बी का, तेरे रब की रहमत का, अल्लाह की रहमत का नहीं कहा गया, तेरे रब की रहमत का। तो यानी रब का लफ्ज लाया गया, और रब के लफ्ज में क्या आया, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं कि रब के लफ्ज के अंदर परवरिश करना, पालना, मोहब्बत इसके अंदर है, पालने का माना है। तो चूंकि आगे औलाद देने का जिक्र है, तो इसलिए यहाँ पे रब का लफ्ज आया। और आप देखते हैं कि पहले जो हम पिछली 2 सूरतें पढ़ चुके हैं उनमें आब्द आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज आया, और यहाँ पे जकरिया अलैहि सलाम के लिए अब्द का लफ्ज आया। और अब्द का लफ्ज मैंने जैसे आपको बताया कि अल्लाह ताला के नजदीक इंसान के लिए जो बुलंद तरीन मकाम है, जिस पे वो पहुंच सकता है वो यही अबदियत का मुकाम है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह का गुलाम बन जाए। ये है सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ताला के पास। दुनियावी लिहाज से अब्द होना एक इंसान के लिए नीचा समझा जाता है, ये कोई किसी का गुलाम हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ गुलामी जो है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप सोच लें कि सख्त हालात हैं, जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, इतने नासाजगार हालात में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बात की है। उस दौर के लिहाज से आप सोचें ना, और अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं, इस वक्त किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बात की है। ऐसे लगता है कि तपती धूप में जैसे कोई साया कर देना, जिस वक्त दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला रहमत का जिक्र कर रहा है कि मेरी रहमत हुई है, तेरे रब की रहमत हुई है जकरिया अलैह सलाम पर। आप अपने भी हालात में इसको रखिएगा, जिन भी मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप ये देखें कि वो उस वक्त जब ये सूरत उतर रही थी मक्का में, उस वक्त वहां के लोगों के क्या हालात चल रहे थे। ठीक है, जब दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण ना नजर आ रही हो, उस वक्त अल्लाह की रहमत की जो बरखा है वो कैसे बरसी है जकरिया अलैहि सलाम पे, इससे इंसान को क्या क्या हासिल होता है, होप, उम्मीद कि अंधेरा दूर हो जाएगा। इतनी ज्यादा तसल्ली है इसके अंदर, इतनी ज्यादा ढारस है इसके अंदर। तो और वैसे ही रहमत का लफ्ज सुन के ही इंसान को ना एक तसल्ली और तशफी मिल जाती है कि अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत ज्यादा है, और एक रहमत तो रब्बी का, तेरे रब की रहमत, तो रब है, रब तो वो होता है जो मालिक होता है, और जिस चीज का कोई भी मालिक हो वो अपनी चीज की केयर करता है, छोड़ नहीं देता अपनी चीज को। तो रहमत भी है और रब भी है, रब में भी रहमत का माना आता है, और रहमत तो है ही अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी रहम की बात। और इसमें तकदीम और ताखीर है, यानी यहाँ पे रहमत रब्बी का पहले आया और फिर आबदहु ज़करिया आया। हालांकि होना क्या था, अगर वैसे सीधा लिया जाता तो आबदहु ज़करिया पहले आना था, रहमत रब्बी का बाद में आना था, लेकिन असल में एम्फोसाइज किस पे है, जब किस चीज के ऊपर जोर देना होता है ना, तो फिर उसको पहले लाया जाता है। तो असल में जोर देना था रहमत का, रब की रहमत के ऊपर जोर है यहाँ पे। तो हर पढ़ने वाले को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बताया जा ही रहा है, हर पढ़ने वाले को भी कयामत तक के लिए ये बताया जा रहा है कि जकरिया अलैहि सलाम पे देखो अल्लाह ताला ने कैसे रहमत की थी। आप भी जकरिया अलैहि सलाम के नक्शे कदम पे चले तो आप भी रहमत को पा सकते हैं। और यहाँ पे हादा महजूफ है, महजूफ का मतलब क्या, यानी ये ओमिटेड है लेकिन अंडरस्टूड बात है कि ये है रहमत तेरे रब की। जकरिया अलैहि सलाम कौन थे, कहा जाता है जकरिया अलैहि सलाम नज्जार थे, यानी बढ़ई थे, कारपेंटर। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि नबियों ने भी हाथों से काम किया, और हाथ से काम करना और कोई पेशा अपनाना, इसमें कोई आर नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसको नापसंद किया गया कि किसी के आगे हाथ फैलाए जाएं। आज हमारे यहाँ इस चीज से आर नहीं महसूस करते कि किसी से पैसे मांग ले, मगर ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े कोई चौधरी हैं कि हम तो जी काम कर ही नहीं सकते, और बैठ के खाना और अपने आप को बड़ी चीज समझना कि हम तो काम नहीं करते, और काम करने को या कोई भी पेशा अपनाने को या किसी किसी भी प्रोफेशन को हम समझने लगते हैं कि ये तो हमारी बेइज्जती है कि मैं टैक्सी चला लूं, या ये मेरी बेइज्जती है कि मैं कोई बढ़ई का काम कर लूं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर लूं, या मैं कोई मजदूरी का काम कर लूं, या मैं कोई क्लर्कशिप का काम कर लूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी, हाँ बस बैठ के हुक्म चलाना ये मेरे लिए अच्छी बात है, इससे मैं बड़ा बन जाता हूँ। हालांकि ये बड़ाई की बात नहीं है। आप देख लें, तमाम पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं। अब आप बकरियां चराने को आज क्या सोचेंगे, हेलो ये तो बहुत ही कोई छोटी चीज है, या बहुत ही छोटा सा प्रोफेशन है, या उसको मतलब कमतर चीज समझते हैं, हालांकि पैगंबरों ने इसमें कोई आर नहीं समझी। आप देखें कारपेंटर होने को आज आप सोचेंगे कि ना ये तो कोई बात ही नहीं है, बड़ा कोई भाई प्रेसिडेंट ही होना चाहिए। नहीं, तो उन्होंने जब आर नहीं समझी तो हम क्यों समझे। ठीक है, इज नादा रब्बहू, अब उनकी कहानी आई है। अब वो उस रहमत का जिक्र है जिसको यहाँ पे बताया गया ना कि कैसे वो रहमत आई। याद इज जब आता है ना, जब कोई चीज जो होती है माजी में होती है तो उसको कहा जाता है ना, याद करो जब ऐसा हुआ था, याद करो जब पुकारा था उसने, किसको पुकारा, अपने रब को पुकारा। पुकार में क्या होता है, निदा जब आप देते हैं ना, हम कहते हैं मुनादी ने निदा दी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होती है कि जोर से होती है। जोर से होती है ना, निदा देने का मतलब है कोई दूर है तो आप फासले वाले पे कहते हैं फलां इधर आओ। जब पुकारा उसने निदान खफिया, निदा मगर सुभान अल्लाह चुपके चुपके। सुभान अल्लाह, इस पे बहुत कुछ लिखा मुफस्सिरीन ने कि वो यानी निदा कैसी थी, कि थी तो निदा लेकिन वो अंदर निदा थी, जब बाहर है तो वो खुफिया थी। अंदर से तो वो पुकार रहे हैं, जैसे अंदर डेस्परेशन होती है ना, तो इंसान कहता है जब वो बहुत डेस्परेट होता है तो वो फिर उस उसके अंदर चीखें होती हैं, उसके अंदर वो सारा कुछ होता है जो भरा हुआ है, लेकिन जब वो पुकार रहे हैं तो खफी है। यहां से पता चला कि दुआ जो है ना, खफी मांगना, चुपके चुपके खुफिया मांगना, वो ज्यादा बेहतर है ऊंची आवाज से। और जो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा के वो ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, तो आपने फरमाया कि तुम इतनी ऊंची ना पुकारो, उस तुम किसी बहरे को सुना नहीं रहे और किसी गायब को सुना नहीं रहे, यानी अल्लाह ताला इंसान की शहरा से भी ज्यादा करीब है, और अल्लाह ताला उसके दिल के भी ख्यालों को सुनता है और उसकी जो पुकार है उसको सुन सकता है। तो फिर क्या जरूरत है इतनी ऊंची ऊंची चीख चीख के पुकारना, जैसे कुछ लोग डेस्परेशन में चीखना शुरू कर देते हैं, अल्लाह तू कहाँ है, अल्लाह तू ऐसे, ये अदब के खिलाफ है, ये अदब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखें दो दफा है ना, नादा और निदा, एग्जेजुरेशन के लिए आ रहा है कि वो पुकार रहे थे, डेस्परेशन में पुकार रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी पुकार कैसी थी, खफिया थी, ऐसे चीखना नहीं था। तो हालांकि अल्लाह का तला को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चीख के पुकारें या आहिस्ता पुकारें वो तो सुन सकता है, लेकिन अदब नहीं है ना इसमें। और दूसरा इखलास, इखलास जो है ना वो ज्यादा किस में है, कि इंसान खफी अल्लाह को पुकारे, क्योंकि जब वो ऊंचा पुकारता है ना उसमें रियाकारी आ सकती है, लोगों को सुनाना आ सकता है। तो इन्होंने क्यों ऐसे पुकारा, एक तो रियाकारी से बचने के लिए, दूसरा जब इंसान खफी पुकारता है ना तो वो शर्मसारी से बच जाता है, इसलिए कि बस चीजें हम लोगों के सामने कहेंगे ना तो वो मजाक करेंगे कि ये कैसे, यानी एक आप अपना तमाशा बना लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई मांग रहा है, कोई लड़की मांगती है कि या अल्लाह मेरी शादी हो जाए, मुझे कोई अच्छा शोहर दे दे, तो किसी के सामने मांगने में वो शर्म महसूस कर सकती है ना, इन अल्लाह ताला के सामने कोई शर्म नहीं। अब जैसे जकरिया अलैहि सलाम, अब वो मांग रहे हैं औलाद, इतने बूढ़े, कहते हैं वो इतने बूढ़े हो चुके थे, बास रिवायत में तो होता है कि 100 साल से भी ऊपर हो गए थे। आगे आप उनकी बात भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने जयीफ थे, लेकिन फिर भी जब वो औलाद मांग रहे हैं तो कोई सुने तो कहेगा कि देखो बूढ़े को क्या शौक चढ़ा, ऐसे हो सकता है ना। तो उसके अंदर इंसान का एक पर्दा भी रह जाता है, फिर आजी भी इसके अंदर ज्यादा है। तीसरी बात क्या है, खफी जब आप करते हैं ना दुआ, तो ये सारी चीजें उसमें आजी, आजी खफी में ही है, आजी इसमें नहीं है कि चीखना शुरू कर दे इंसान। ठीक है, और तो एक बात हमें यहां से ये पता चलती है कि जब भी पुकारना है तो रब को ही पुकारना चाहिए, ये नहीं कि इतने साल से तो मैं मांग रहा हूं तो कोई फायदा तो हुआ नहीं तो अब किसी और के पास चलते हैं, अभी मांगते मांगते बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, आप कोई जवान देखे मांगे औलाद तो फिर भी इतना कोई बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, इतना इसको आज इतनी बुरी चीज बना दिया गया है, कई औरतें शेयर करती हैं, तो कहती हैं आए अगर इस उम्र में हमारे पास औलाद हो गई तो लोग क्या कहेंगे। बेचारियां डरती हैं उसकी वजह से, वो यानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो फिर भी अबॉर्शन करा लेती हैं कि लोगों को हम क्या जवाब देंगे। तो फिर जो लोग इस तरह की बातें बनाते हैं और इस पे हंसते हैं और एक बातें ऐसी करते हैं कि देखो इनको बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ गया और ये कैसे हैं और ऐसे, वो फिर पहले सबसे तो इन पैगंबरों का मजाक उड़ाने वाले हो गए। आपके सामने तो ये पैगंबरों की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी किस एज में उनको बेटा हुआ था, किस एज में इसहाक अलैहिस्सलाम हुए थे, सोचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़ी एज में वो थे जब जिस वक्त हुए थे। तो सबसे पहले तो फिर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बाद किसी और की बारी आती। कोई भी और यहाँ पे तो इतनी एज इसका नहीं कि 90 या अबव 90 या 100 अबव कोई हो, कोई बेचारा 50 साल का भी हो जाता तो उसके ऊपर भी मजाक है। किसी के बड़े बच्चे हो जाए और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाता तो उसका मजाक है। तो इस तरह की चीजें हमें कम अज कम जेब नहीं देती जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं और कुरान में पढ़ रहे हैं कि पैगंबरों के साथ क्या था। तो ये उन्होंने प्राइवेटली बहुत उस वक्त मांगा। और ये किस वक्त मांगा, इसकी अगर आपको याद हो तो हम सूरह आले इमरान में ये पढ़ चुके हैं। सूरह आले इमरान में अगर आप देखें आयात, तो आयत नंबर 37 से पहले मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उसमें ये आता है फतकबल्ला रब्बुहा बिकबूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसन व कफलहा जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनकी किफालत की थी। तो जब भी वो दाखिल होते थे उनके पास मेहराब में तो देखते थे कि उनके पास मुंह बेमौसम फल है, तो फरमाते थे या मरियम अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। खालत हुआ मिन अंदिल्ला, तो वो कहती है ये अल्लाह की तरफ से, इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के रिज़्क़ अता फरमाए। हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा, तो वहां से हमें पता चलता है उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की रब्बी हबली मिल्ला दुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ। तो फिर वो उस वक्त कहने लगे है मेरे रब मुझे औलाद की नेमत दे, नेक औलाद की, तो वो तो उस दुआओं को सुनने वाला है। ठीक है, तो उस वक्त की उनकी ये दुआ है जब उन्होंने देखा कि वो रब जो बेमौसमे फल हजरत मरियम को दे सकता है तो मैं भी बेमौसमा एक दरख्त हूँ, अल्लाह ताला मुझसे भी औलाद, मुझे भी औलाद दे सकता है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा जिक्र वो है जो खफी हो, खुफिया यानी खामोशी के साथ। ऐसे नहीं कि आप हाथ में तस्बीह पकड़ के ना तो लोगों को दिखाते रहें कि जो लोगों को पता चले मैं तो बड़ा जिक्र कर रही हूँ, जिक्र चाहे करने ना वो, लेकिन तस्बीह पकड़ी भी है ताकि लोग देख लें, या फिर ऐसे लोगों को जिक्र कर करके बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हम कितना जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो खफी जिक्र है ना वो बेहतरीन है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हमारी दुआएं भी और हमारे अस्कार भी ऐसे हों जिसमें यानी प्राइवेटली हों, चुपके चुपके हों, खास तौर पे रात के पिछले पहर जब आप उठ के दुआ करते हैं तो उस दुआ के अंदर कोई रियाकारी नहीं आती, इसलिए क्योंकि उस वक्त कोई आपको देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई जानता ही नहीं कि आप इस वक्त उठे हुए और जारी कर रहे हैं। लेकिन देखें आप हमारी दुआएं, हम वैसे बहुत कहते हैं आए अल्लाह ये हमारे लिए कर दे, लेकिन हमारी दुआओं के अंदर ना जैसे इन्होंने दुआ की है, आप देखिएगा दुआ के एटिकेट्स क्या होते हैं, हमारी दुआओं के अंदर वो इखलास नहीं होता, वो तड़प नहीं है, क्योंकि जो दुआ दिल से की जाए ना वो कबूल होती है। अब यहाँ पे आप देखें वो खफी आवाज होती है, इंसान जो ऊंची ऊंची ना हो, जो चुपके चुपके हो और पुकार रहे हैं अल्लाह ताला को अपनी तन्हाई में, इसका मतलब है कि कुछ लोगों के सामने नहीं है, खफिया तो तभी हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी दुआ, अल्लाह ताला फरमाते ना उदो रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो तदर्रो के साथ, खुशू के साथ, खुशू के साथ और खुफिया। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, और कहा जाता है बादशाहों के आगे आवाज बुलंद नहीं की जाती, ऐसे ही है ना। तो इतने बड़े बादशाह के आगे ऊंची आवाज से ऐसे करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इंसान फोकस भी लूज कर देता है। काला रब्बी इन्नी वहन अल आज़म मिन्नी, उन्होंने कहा ए मेरे रब, बेशक कमजोर हो गई आदमु मिन्नी। इजाम नहीं कहा, इजाम हड्डियां, लेकिन हमने आदमु हड्डियां ही करा, मिन्नी इजाम ही भी कहा जा सकता था, मेरी हड्डियां, आदमु और मिन्नी अलग है। इससे पता चलता है कि आजम तो एक हड्डी को कहते हैं, तो जैसे ऐसे लगता है कि सारी हड्डियां एक ही हो गई, और मिन्नी अलग है, जैसे मेरे से अलग ही हो गई, और कैसी हैं वो, कमजोर हो गई हैं, सब वहन हो गई हैं। तब वहन, जब कोई चीज होती है ना, यानी हार्ड चीज जब सॉफ्ट हो जाए तो उसको कहते हैं वहन। तो जैसे सारी हड्डियां मिन्नी मुझसे अलग हो गई हैं, ठीक है, और यानी इतनी कमजोरी, और आपको पता है अगर हड्डियां कमजोर हो जाएं तो इंसान तो हड्डियों पे खड़ा होता है। अब वो हड्डी सही ना रहे तो फिर आप बताएं कि इंसान के हालात कैसे हो जाते हैं। अब कहते हैं ना इनकी उम्र 110 साल हो चुकी थी, तो उस वक्त क्या हालात होंगे हड्डियों के। वश्ताला रासु शैबा, और भड़क रहा है मेरा सर बुढ़ापे की वजह से। अब सर बुढ़ापे की वजह से भड़क रहा है का मतलब क्या, यानी उन्होंने अपने सर को ऐसे, जैसे कोयला होता है ना, कोयला जल जल के फिर उसके बाद क्या उसका कलर होता है, तो व्हाइट हो जाता है, तो भड़क रहा है मेरा सर। और व्हाइट बाल जो होते हैं ना वो ज्यादा ही प्रोमिनेंट होते हैं, तो बहुत दूर से नजर आते हैं, काले बालों वाला होता है वो जितनी नहीं, लेकिन उसमें एक ग्लो होती है। तो इतनी खूबसूरती से ये बात उन्होंने फरमाई ना कि अल्लाह मेरी ये हालत हो गई है, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन फिर भी वलम अकुम बी दुआए का रब्बी शकिया। ये इतनी खूबसूरत बात है, इतनी खूबसूरत बात है, अल्लाह फिर भी मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, 110 साल का बंदा होके कह रहा है अल्लाह मैं तेरे से मांग के कभी महरूम नहीं रहा। अल्लाह ताला हम भी तुझसे मांगते हैं, तूने ही आज तक हमें अता किया, आगे भी तूने ही अता करना। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुरादों को पूरा फरमा दे। तुझसे ही पहले मांगा और तुझसे ही मांगना, तूने आज तक कभी मायूस नहीं किया। अच्छा हमारी क्या बात होती है, हम कहते हैं लो हमारी तो कभी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी तो नहीं दुआ कबूल होती, आप ही मांगे हमारे लिए, ये एटिकेट्स नहीं है दुआ मांगने के। सुभान अल्लाह, आपका मतलब है कि वो पहली दफा मांग रहे होंगे औलाद, कभी नहीं उन्होंने मांगी, उनको अभी याद आया मांगने का, नहीं इसका मतलब पहले भी मांगते रहे होंगे। लेकिन सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह मैं तुझसे मांग के तो कभी मायूस नहीं हुआ, यानी तूने आज तक इतना कुछ अता किया, हाँ इतना कुछ अता किया। कहते हैं हातिम ताई जो था ना सखावत का, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है हातिम ताई, उसके पास एक आदमी आया और उसने कैसे मांगा, उससे कहने लगा मैं वही हूं जिसके साथ आपने हमेशा कर्म किया। अल्लाह अकबर, तो हातिम ताई कहने लगा अंदर आ जाओ, उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है जो मेरी सखावत का ही मुझे वास्ता दे कि आप मेरे साथ हमेशा कर्म करने वाले, मैं वही हूँ जिनके साथ आपने पहले भी हमेशा कर्म किया। तो ये कहना कि किसी को कहें आपने तो कभी आज तक हमें कुछ दिया ही नहीं, आपको कैसा लगता है, आपके बच्चे अगर आपको ये कहते हैं अम्मी आपने तो हमारे साथ कभी अच्छा किया ही नहीं है, आपने हमें क्या दिया है, तो कैसा लगता है, माँ बाप का दिल टूट जाता है, कितने गमजदा होते हैं उसके बाद, अल्लाह ये बच्चा ये कह रहा है, और हमने तो क्या दिया होगा अपनी औलाद को, जो अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ नवाजा है, बिन मांगे हमें कितना कुछ दिया है, इसके बावजूद अगर हमारे जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं तो ये कितनी बेअदबी के अल्फाज है, कितनी बुरी बात है कि हम कहें हमारी तो कभी दुआ ही नहीं कबूल है, कितने आराम से आपने कह दी, एक कभी नहीं दुआ कबूल हुई, हालांकि उसके भी कबूलियत के अल्लाह ताला जो दुआ कबूल करता है उसके भी तरीके हैं कबूल करने के, ये हम जानते हैं कि हर दुआ कबूल होती है, लेकिन तरीके हैं, ये नहीं होता जरूरी कि जो हमने मांगा है वही मिल रहा है तो फिर कबूल हुई है, उसके अलावा तो कबूल ही नहीं हो रहा। हम तो ऐसे करते हैं जैसे कि हम किसी ऐसे को पुकार रहे हैं जो ना सुनता है
ना कोई हमारी तरफ तवज्जो देता है, बस हम हवा में ही बोलते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दिल से मांगी है ना तो कबूल जरूर हुई है, मगर उसके ढंग है कबूल करने के और उसका वक्त है कबूल करने का। हम डेस्परेशन से बोलते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि जकरिया अलैहिस्सलाम की एज आप अंदाजा कीजिए, और फिर वो कह रहे हैं अल्लाह मैं महरूम नहीं हुआ। सोचिए कि अंबिया का तरीका, नेक लोगों के तरीके, दुआ तो मांगना हम सीख लेना। और आप देखें, दुआ जो होती है ना वो कनेक्शन बताती है इंसान का, कि अल्लाह ताला के साथ उसका कैसा कनेक्शन है। अब यहां पे देखें, और अपनी हालत ज़ार बता रहे हैं, और उलमा इससे कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपनी कमजोरियों का जिक्र करे अल्लाह के आगे, अपनी मजबूरियों का जिक्र करे, अपनी गलतियों का भी जिक्र करें, और अपनी बेबसी शो करें अल्लाह के आगे। आप दुआएं मुस्तदाफीन देखते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से आके दुआ मांगी थी, अपनी कमजोरी का जिक्र किया था। तो आप भी बताएं कि अल्लाह मैं कितनी बेबस हो गई हूं, मैं कितनी मजबूर हो गई हूं। अल्लाह तुझे पता है मेरे पास और कोई दर नहीं जाने का। वो बता रहे हैं ना, अब अल्लाह ताला को क्या नहीं पता कि कितने बूढ़े हो गए, पता है, उससे ज्यादा कौन जान सकता है। मगर अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदा इजहार करे, उसका बंदा बोले। अब बाज लोग दुआ नहीं करते, नहीं दुआ करने का क्या फायदा, अल्लाह को पहले ही पता मेरे क्या हालात है, वो तो ज्यादा ही जानता है, तो इससे मेरे दुआ करने का क्या फायदा। नहीं, अंबिया ने दुआएं की हैं, अंबिया जो अल्लाह ताला के कितने करीब है, और वो तो यानी उनसे ज्यादा परफेक्ट कोई इंसान हो नहीं सकता, जितने नबी होते। इसके बावजूद वो अल्लाह से मांगते थे। अब वो भी कहते हैं हमें क्या, अल्लाह ताला का दीन है, जो मर्जी हो, अब वो तो अल्लाह ताला का ही है ना, वो जैसे मर्जी करे, हमें हमें क्या, हम मांगने की जरूरत क्या। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना गिरियाउजारी कर रहे हैं कि चादर बार बार गिर जाती थी कंधों से, कितनी गिरियाउजारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मुझे क्या, फिर नहीं होगा तो नहीं होगा ना। लेकिन तो सब मांगते थे। इमाम मुजनी कहते हैं कि इमाम शाफी से मिलने गया, वो बिस्तर मर्ग थे, तो उनसे पूछा कि क्या हाल है, तो फरमाते हैं मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मैं नहीं जानता मेरे लिए आगे जन्नत है या जहन्नम। फिर कहते हैं ए अल्लाह हर चीज मुझे छोड़ चुकी है, मेरे लिए सब चीजें तंग हो गई हैं, मेरी एक ही उम्मीद है और वो तू है मेरे अल्लाह, ये सिर्फ तेरी रहमत और करम है जिससे मुझे उम्मीद है, वरना जब मैं खुद को देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ, अगर तेरी रहमत और करम को देखता हूँ तो मेरे अंदर नई उम्मीद भर जाती, और मैं जानता हूं कि तू कितना गफूर रहीम। यानी इंसान अपनी बेबसी भी बताता है, इंसान अपनी मजबूरी भी बताता है, इंसान अपने आप को छोटा करता है अल्लाह के आगे, फिर मांगता है। तो क्या जब हम दुआएं करते हैं तो हम वो रटी रटाई दुआएं मांग रहे होते हैं कि हमने किताब खोली भी है। इवन हम जब वहां जाते हैं हरम पाक में जाते हैं, तो वहां पे भी जाके बस दुआओं की किताब से हम बस पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, और या हम 2-4 मिनट दुआ की और बस दुआ करके बस काफी है, इतना नहीं, इतना नहीं काफी। आप ये देख लें कि कितनी उन्होंने जो दुआ की अभी तक तो आई ही नहीं है, जकरिया अलैहि सलाम ने मांगा क्या, ठीक है, अभी तो आया ही नहीं है, तो अभी तो वो सिर्फ अपने आप को बयान ही कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें सीखना है, दुआ को मांगना सीखना है। देखिए हम कमजोर हैं, अपनी कमजोरी को जाहिर करें उस कवि के आगे जो ताकतवर है, दुआ में आजिज़ी अख्तियार करें। अब देखते हैं, और दुआ में ये भी कि अल्लाह ताला की तारीफ पहले करें। सूरह फातिहा में आप देखते हैं ना कि फौरी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं कह दिया गया, पहले कितनी लंबी तमहीद है। अल्लाह अकबर। फिर वा इन्नी खिफ्तुल मवालिया में वराई, अब बता रहे हैं कि मैं क्यों तुझसे ये मांग रहा हूं अल्लाह, अभी भी दुआ नहीं, जो चीज नहीं मांगी, अल्लाह मैं डरता हूँ अपने कराबतदारों से अपने बाद। मीवराई का मतलब ये कि मेरी डेथ के बाद मेरे कराबतदारों से मैं डरता हूँ। किस बात से डरता हूँ, कि मतलब है कि वो इस दीन को आगे लेकर नहीं चल सकेंगे, वो ये नहीं है, मवाली जो होते हैं ना वो डायरेक्ट वारिस नहीं होते कि मेरी औलाद, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली को, जैसे चचा मामू कजन वगैरह, कि मैं उनसे डरता हूं कि वो कहाँ इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे, इस पैगाम को आगे ले जा सकेंगे। अंबिया के लिए ये नहीं होता था कि भाई मेरे पैसे को कहाँ वो करेंगे, मेरे बाद मेरा कारोबार कौन संभालेगा, या अल्लाह हम तो इस वजह से मांगते हैं ना कि अल्लाह मेरे बाद मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरी इन चीजों का क्या होगा। नहीं, उनको क्या था, मेरे बाद मेरे इस मिशन को कौन आगे लेकर चलेगा। ठीक है, तो वकानत इमरअती आकिरा, और मेरी बीवी बांझ है। सुभान अल्लाह, अभी तक मांगा नहीं है कुछ भी, अभी सिर्फ बातें ही हो रही हैं। तो अल्लाह ताला से बात करना भी सीखना चाहिए। हमारे पास लोगों के साथ बातें करने का इतना टाइम भी है और बातें खत्म भी नहीं होती, लेकिन यार अल्लाह ताला से बात करने लगते हैं तो फिर क्यों बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए कि कनेक्शन नहीं है ना, कभी कनेक्ट ही नहीं किया। बातें इंसान उसके साथ करना चाहता है, पता है, ये जो उसको महबूब होता है, जो उसको पसंद होता है। आप देखें, जिनके साथ आपकी बनती नहीं है उनके साथ ज्यादा 2 मिनट बात कर लेंगे, तो उसके बाद कहेंगे अच्छा चलो मैं चलती हूँ। लेकिन जिन जो आपको प्यारे होते हैं ना, उनके साथ बात कर करके भी आप थकते नहीं है, कहते चलो 5 मिनट और, चलो 5, चलो 10 मिनट और, दरवाजे तक जाते जाते भी 10 मिनट खड़े रहेंगे, बाहर जाके भी 10 मिनट खड़े रहेंगे, दिल ही नहीं करता छोड़ने को, है ना। तो जो अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करता हो ना, फिर उसकी बातें अपने रब से भी खत्म नहीं होती, फिर वो बातें करके थकता नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इन आयतों के अंदर सीखने के लिए हमारे लिए। तो मेरी बीवी बांझ है, आई मीन लुक एट द ह्यूमिलिटी के जो उनके अंदर आजी थी ना, वो कितनी ज्यादा थी अपनी, यानी ये भी अपनी कमजोरी का इजहार है ना, कि ना बीवी एक ही थी उनकी, और वो भी बांझ के आज तक उनकी औलाद नहीं हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अकीम नहीं कहा, अकीम का मतलब है बायोलॉजिकली इस काबिल नहीं है, जो अल्लाह ताला ने जहां पे कुरान पाक में फरमाया ना कि कुछ को हम बेटे देते हैं, कुछ को बेटियां देते हैं, कुछ को अकीम रखते हैं, यानी वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको औलाद हो बायोलॉजिकली इसका, जैसे किसी का यूट्रस ही नहीं हो, किसी को ओवरीज ही नहीं हो, या ऐसा कोई मसला है, तो फिर वो तो अकीम है। लेकिन आखिर वो है जिसकी कभी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, बस बांझ जिसको कह देंगे कि कभी औलाद हुई ही नहीं। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकती कोई, उसके अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं है बात। ठीक है, तो अब फरमाते हैं हमारे के जाहिरी असबाब क्या है, आखिर है, आखिर है, मकर अकीम नहीं है। फहबली मिल लदुनका वलिया, तो हब हब का आप देख रहे हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना। हब क्या होता है, जैसे हिबा आप कहते हैं ना, हिबा गिफ्ट को कहते हैं, तो ये वो वाला गिफ्ट होता है जिसके बदले में आपको कुछ, जो देने वाला है वो कुछ नहीं चाहता इन रिटर्न। ठीक है, तो एला मुझे गिफ्ट दे दे, और मिल लदुन का अपनी तरफ से। और जब भी औलाद मांगी जाती है तो इस तरह का ही वर्ड आता है, क्योंकि ये इनके जो दूसरी जगह पे भी आले इमरान में ना, और रब्बी हबली मिल लदुन का जुर्रियतन तय्यिबा, यहाँ पे हबली मिल लदुन का वलिया, एला वली दे दे। वली यानी वली वो होता है जो करीब होता है, जो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जो करीबी दोस्त को भी कहते हैं, सपोर्टर को भी कहते हैं। तो मुझे वली दे दे, मेरा वारिस दे दे, मेरा मददगार दे दे, और जो मेरे करीब हो। तो अब इस ये किस चीज के अंदर वरासत है, जैसे मैंने आपको बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हमारा वारिस नहीं बनाया जाता, जो हम छोड़ देते हैं अंबिया, वो सदका है, यानी अंबिया के गुरु, अंबिया का वारिस कोई नहीं होता, जो भी वो छोड़ते हैं ना माल में से, वो भी सदका होता है, उनकी औलाद को नहीं मिलता कुछ। अगर अब खैर अंबिया के उसमें तो कोई ऐसी चीज होती भी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें छोड़ी थी बहुत ही कम, कोई एक जीरा थी, या इस तरह से कोई प्याला था, या ऐसे एक जग सा था, या ऐसी चीजें थी, मगर अदरवाइज अगर बड़ी बड़ी चीजें भी हों तो उनका जो तरक्का है वो ऐसे नहीं बढ़ता जैसे दूसरे लोगों का होता है, बल्कि उनका सदका हो जाता है। तो उनकी जो विरासत होती है वो इल्म होता है, ठीक है। तो ज़करिया अलैहि सलाम ने भी माल के वारिस की दुआ नहीं की है कि वली का मतलब माल का वारिस, बल्कि इनके इल्म और उनका जो मिशन और उनकी जो ये जो 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 तालीम थी उसकी विरासत, ठीक है, दीन को आगे लेकर चलना। क्योंकि देखिए उनकी तो जो अंबिया की सारी सबसे बड़ी फिक्र यही होती है ना कि इससे इसको फैलाया जाए, दीन का काम आगे किया जाए। यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, वो जो वारिस हो मेरा भी और आले याकूब का भी। याकूब अलैहि सलाम की आल से मतलब क्या है कि यानी याकूब अलैहि सलाम की जो औलाद, जो उनके फॉलोअर्स, और किस में, नबुवत में, इल्म में, दीन में, ये लिखा गया। लेकिन उलमा कहते हैं नबुवत में विरासत नहीं होती। नबी का मतलब ये नहीं होता कि उसका बेटा भी नबी बने, उसका बेटा भी नबी बने, उसका बेटा भी नबी, ऐसे नहीं होता। तो जाहिर है यहाँ पे अल्लाह ताला ने तो उनको नबी बेटा दिया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मेरे बाद मेरा बेटा नबी बन जाए तो मैं आगे नबुवत को आगे ट्रांसफर करके जाऊं। नबुवत जो थी सिर्फ अल्लाह ताला का चुनाव होता है, वो किसी को कोई दे नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने इल्म और दीन और तौहीद और इस जिम्मेदारी को कि आगे दीन को फैलाए, ये तो कोई भी कर सकता है ना। तो ये एक कीमती चीज है जो कि आले याकूब के पास भी थी, उन्होंने भी आगे ये मिशन को लेकर चले, और अपनी भी और आले याकूब की भी विरासत, उसका वारिस बने। इससे पता चलता है कि एक ही मिशन है आले याकूब का भी और इनका भी, तौहीद के पैगाम को आगे लेकर चलना, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि तीन चीजें इंसान के लिए सदका जारिया बनती हैं, और उनके अंदर एक नेक औलाद भी है। वजअलहु रब्बी रदिया, और ये बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह उसको, मैं मेरे रब उसको बना देना रदिया। और रदिया मतलब क्या, यानी जिस जो इसमें मुबालगा भी है और ये ना एक्टिव और पैसिव दोनों में आता है, जो राजी कर दे तुझको और जिससे तू राजी हो। सुभान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं कभी भी मांगना चाहिए कि बस मुझे अल्लाह औलाद दे दे, औलाद दे दे। कई लोगों को देखा कि वो औलाद की ऐसे ही दुआ मांगते, बस अल्लाह औलाद हो जाए, इसको औलाद हो जाए, सारा घराना यही दुआ मांग रहा होता है। हालांकि कभी भी सिर्फ औलाद ना मांगे, इसलिए कि आपको नहीं पता वो औलाद कितनी बड़ी आजमाइश बन सकती है। हमेशा मांगे तो ऐसी औलाद मांगे जैसे उन्होंने मांगी ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या यहाँ पे रदिया, अल्लाह वो औलाद जो इतनी प्यारी औलाद हो कि जिससे तू राजी हो और जो तुझे राजी करे, और जो अपने वालदेन के लिए ऐसी हो कि उनको राजी करे और वालदेन उससे राजी, और सब लोग उससे राजी हों, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी चीज जो होती है ना, यानी ये वो सिफत है कि जो इंसान को महबूब बना दे अल्लाह ताला का, जो अल्लाह को राजी करने वाला है वो उसका महबूब है। तो हम अगर ज्यादा ही दुआ कर लेते हैं तो हम कह देते हैं या अल्लाह बस सेहतमंद औलाद देना, बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसके ऊपर हमारी ज्यादा तवज्जो होती है। तो इससे हमें पता चलता है ना कि कैसी दुआ करनी है औलाद के लिए और कब से करनी है। ये नहीं कि जब वो पैदा हो जाते हैं तो अब हम दुआ करें अल्लाह वो नेक हो जाए, अभी पैदा नहीं हुए, अभी तो कंसीव भी नहीं किया उनकी वाइफ ने, उस वक्त से जो दुआएं मांग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जोड़ों को, जो भी कपल्स होते हैं उनको इस तरह से दुआ करनी चाहिए, ठीक है। और आल का मतलब क्या है, आल में फैमिली भी होती है, आल में तो सिर्फ फैमिली होती है ना, आल में फैमिली भी होती है, रिश्तेदार सारे, जो भी फॉलोअर्स भी, उम्मती भी, साथी भी, घर वाले भी, ठीक है। तो आले याकूब के में फिर इसका मतलब ये सारे ही लोग आ गए जो भी उनके फॉलोअर्स थे याकूब अलैहि सलाम के, और जो भी उनके मिशन को आगे लेके जाने वाले थे, वो इल्म और हिकमत का अल्लाह वारिस बना देना। और वो जो क्वालिटीज याकूब अलैहि सलाम में उनकी आल में थी, वो उसको देना। ठीक है, तो दीन को प्रिजर्व करने के लिए एक्चुअली दुआ कर रहे हैं कि दीन आगे लेकर चलने वाला जो हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि जो उस्ताद हों उनको भी ऐसे शागिर्दों की दुआ करनी चाहिए जो उनके मिशन को आगे लेके जाने वाले हों। ऐसे स्टूडेंट्स अल्लाह मुझे देना कि जो इस काम को आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग आके बताते हैं कि आपकी क्लासेस को लेकर हम आगे पढ़ाते हैं, बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ लोग बताते हैं बाज़ बताए बगैर ही, माशाल्लाह सुन के आगे पहुंचाने वाले होते, बताते तो नहीं है वो, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को तो पता है ना। तो ये अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कोई मांग सकता है, औलाद के लिए तो मांगना ही चाहिए, ऐसी औलाद देना। या जकरिया, ए जकरिया। अच्छा, अब आप देखें कि उलमा कहते हैं कि यहाँ पे ये नहीं आया कौला, ना ही आया फा कि फिर ऐसा हुआ, फौरन या जकरिया। इससे क्या पता चला कि यानी जरा भी डिले नहीं हुआ, फौरी तौर पे उनकी दुआ कबूल हो गई। इधर उन्होंने दुआ की, जब अल्लाह ताला ने कबूल करनी हो तो उसका भी एक वक्त होता है, जब उसको पता है कि किस वक्त देना है, किसको औलाद की नेमत देनी है। या जकरिया, ए जकरिया, इन्ना नुबशिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, हम बशारत देते हैं तुझको एक बेटे की जिसका नाम यहया है। लम नजअल लहू मिन कब्लु समिया, हमने इससे पहले इसका हम नाम या इसका हम मिसल या इसका इसके जैसा हमने कोई नहीं बनाया। और आल इमरान में आता है, फनादतुल मलाइका तो वह कायम युसल्ली फिल मेहराब, हमने पुकारा उसको जबकि वो मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे, दुआएं मांग रहे थे उस वक्त अल्लाह से। इन्नल्लाह युबशिरुक बियहया, हम आपको बिशारत देते हैं यहया की, और मुसद्दिकम बिकलिमति मिनल्लाह व सय्यदम व हसूरम व नबियम मिन सालिहीन। इतनी सारी बशारती हैं, वो सय्यद भी होगा, हसूर भी होगा, नबी भी होगा, सालिहीन में से होगा। सुभान अल्लाह। तो वहां पे ये आया, यहाँ पे ये आया कि एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा, यानी अल्लाह ताला ने नाम भी खुद ही रख दिया इसका, इस बच्चे का नाम अल्लाह ताला ने रखा है। और यहया क्यों इनका नाम कहा गया, कहते हैं कि इसलिए क्योंकि यहया का मतलब होता है यानी जिंदगी वाला, जिंदा, हयात से है ना। तो बाज कहते हैं कि ईमान और इताअत से अल्लाह ताला ने इनका दिल जिंदा किया हुआ था, क्योंकि काफिर को कहा जाता है वो मुर्दा है अल्लाह के यहाँ, और जिंदा उसको कहा जाता है जो मोमिन है, जो इताअत गुजार है। इसी तरह जो नाफरमान है वो भी अल्लाह के यहाँ मुर्दा ही है। और दूसरे ये कि इनको जुल्म के साथ शहीद कर दिया गया था, और अल्लाह ताला ने शुहदा को भी जिंदा कहा है कि उनको मुर्दा ना कहो, उनका नाम यहया अल्लाह ताला ने रखा है। तो उलमा कहते हैं देखें कि दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, लेकिन इनका नाम अल्लाह ताला ने इनकी पैदाइश से भी पहले खुद रख दिया। सुभान अल्लाह, खुद रख दिया अल्लाह ताला ने। और समीया का मतलब एक तो ये कि इनका हम नाम कोई नहीं, यानी इस जैसा नाम पहले किसी का भी नहीं था। दूसरा ये है कि इनकी मिसल कोई और नहीं, ये ऐसे थे कि कहा जाता है पाक दामनी की वजह से औरतों से दूर रहने वाले, औरतों की तरफ रगबत नहीं थी इनके अंदर, और किसी बुराई की तरफ इनकी कोई रगबत नहीं थी, कभी कोई नाफरमानी ना, कभी नाफरमानी का इरादा ही किया इन्होंने। जकरिया अलैहि सलाम ने भी तो दुआ क्या की है कि अल्लाह इसको पसंदीदा बना लेना, अपना रदिया, अपना पसंदीदा महबूब बना लेना। क्या बात है कि अल्लाह ताला ने इनका नाम ही खुद रखा जिसका नाम अल्लाह खुद रख ले, तो फिर क्या और इससे बड़ी बात हो सकती है। इंग्लिश में इनको जॉन कहा जाता है, जॉन। तो ऐसी चीजों को ये लोग, अल्लाह ताला माफ करे, बस इन लोगों के अंदर तो कोई अंबिया की जो हुरमत है ना वो इनके हाँ तो है ही नहीं। आपको पता है किस चीज को ये जॉन यहाँ पे कहते हैं, तो अल्लाह ताला माफ करे। तो जिसको जिंदगी दी गई या जिसको जिंदगी मिली ये याहिया का मतलब है। तो ये नाम इनको अल्लाह ताला ने दिया और इन जैसी क्वालिटीज वाला भी कोई नहीं है। कौला रब्बी अन्ना यकूनुली गुलामुन, तो अब फरमाते हैं ए मेरे रब कैसे हो सकता है मेरे लिए कोई बेटा। वह कानत इमरअती आकिरा, और मेरी बीवी तो बांझ है। वकद बलग तु मिनल किबरी इदिया, और मैं पहुंच चुका हूं बुढ़ापे की वजह से हद से भी बाहर। अब आप इसी से अंदाजा कर लेना कि वो खुद फरमा रहे हैं कि मेरी हड्डियां जो हैं वो इतनी कमजोर हो गई हैं, मेरा सर भड़क रहा है, यानी सारे बाल वाइट हो गए, वो तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हुए थे। बाज रिवायत में आता है कि 80 से 100 के दरमियान थे, बाज में 120, इस तरह से मतलब इनकी एज आती है, इन्हें बहुत ही जयीफ। तो कहते हैं कि मेरी तो ये हालत है और मेरी बीवी के तो आज तक नहीं औलाद हुई थी। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि वो कह रहे हो कि अल्लाह कैसे हो सकता है, तू तो कर ही नहीं सकता। नहीं, ये नहीं है, ऐसे नहीं कि उनको यकीन नहीं है अल्लाह ताला के ऊपर, बल्कि खुशी की जब इंतहा हो तो फिर इंसान कहते ना अरे कैसे होगा ये, बस यानी आपको कोई कह दे कि आपको $1 मिलियन मिलेगा तो आप कहेंगे अरे कैसे होगा ये, कैसे होगा। मैं अब आपको यकीन है कि मिल तो जाना है लेकिन बस किस तरह, तो वो भी सोच रहे हैं कि मतलब क्या कैसे ये होगा, ये यानी अमल कैसे होगा। क्या कि मैं तो बूढ़ा हूं और क्या मैं मतलब सही हो जाऊंगा, क्या मैं जवान हो जाऊंगा, या मेरी कोई और बीवी होगी जिससे ये होगा, या कि कैसे होगा ना। मतलब जैसे नहीं इब्राहिम अलैहि सलाम ने पूछा था या अल्लाह मुझे दिखा कि तू कैसे जिंदा करता है मुर्दों को, हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कई फतुहियल मौता, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था अवलम तुम्हें, क्या आप इसके ऊपर यकीन नहीं रखते। तो फरमाया अल्लाह ताला मैं यकीन रखता हूँ लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। तो वो ये पूछ रहे हैं कि यला कैसे होगा ये, आप खुशी से कहते हैं ना इस तरह की बात जो आपको मतलब जब बहुत खुशी हो जाती है और हैरत भी होती है और ऐसे होता है, तो फिर अब होता है कि अच्छा इस सारे के अंदर हो जाएगा, कैसे होगा वो फिर। ठीक है, कौला कताले फरमाया इसी तरह होगा। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि बात तो यही है जो आप कह रहे हैं कि हाँ भाई आपकी बुढ़ापा भी बहुत ज्यादा है और आपकी बीवी भी ऐसे है इसी तरह ही है, लेकिन फिर भी कौला रब्बू का कहा तेरे रब ने हुआ अलैया हय्यिनुन, उसके लिए ये आसान है। ये कौन कह रहा है, ये फरिश्तों ने कहा। लेकिन आप देखें क्योंकि हमें वहां पे पता चलता है ना तनादतुल मलाइका तो वकाइम यसल्ली फिल मिहराब के, उनके पास फरिश्ते आए थे, उन्होंने कहा था ये बात सारी, उन्होंने आके खुशखबरी दी थी, आसमान से नहीं आवाज आ रही थी। लेकिन आप नोट कीजिए कि हर जगह वो कह रहे हैं रब्बी अन्ना यकूनु लि गुलामन, ए मेरे रब कैसे होगा मेरे लिए बेटा। अच्छा रब्बी भी नहीं है, रब्बी या साकिन होना था, बस रब्बी रब्बी क्यों, जब इंसान को किसी चीज की जल्दी होती है ना तो फिर वो ऐसे ही कहता है रब्बी, ऐसा कैसे हो जाए। एक्साइटमेंट भी है और आप उनके इमोशंस को समझें कि किस तरह के होंगे। तो अब इत्मीनाने कल्ब के लिए कह रहे हैं ना कि किस तरह होगा, बस सुभान अल्लाह। तो हैरत खुशी और ये सब मिले जुले जज्बात है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फरिश्तों से पूछ लूँ ना कैसे होगा, उनसे बात करूँ ना, और फरिश्तों ने आके जब कहा है तो भाई इन्हीं को कहना चाहिए, लेकिन नहीं अल्लाह ताला से कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब भी मांगना है अल्लाह ही से मांगना है, किसी और से नहीं। और ये बास मजाहिब के अंदर ये ना मेरा गार्डियन एंजल मुझे ये कर दे, मेरा गार्डियन एंजल मेरे लिए ये हो गया, मेहरबान हो गया, मेरे गार्डियन एंजल ने ऐसा कर दिया, ये सब गलत बातें। जब भी पैगंबरों को देखेंगे वो अल्लाह ही की तरफ रुजू करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहा खाला कहा रब्बू का तेरे रब ने, अब ये फरिश्ते कह रहे हैं कि तेरे रब ने कहा है कि हुआ अलैया हय्यून, के वो ये बात उसके ऊपर बहुत आसान है। अल्लाह ताला के लिए तो क्या कहना है, सिर्फ कुन फयकून। और याद रखें एक बात, ऐसा नहीं है, देखिए ये हमें समझाने के लिए कि अल्लाह ताला कौन कहता है फयकून हो जाता है, ये हमें सिर्फ बताने के लिए, इसलिए कि हमारे लिए कौन से शॉर्टेस्ट कोई चीज नहीं है। हमारी अक्ल के अंदर ना सिर्फ यही आता है कि कोई कह दे हो जाए तो वो हो जाए। अल्लाह ताला को कौन कौन हर वक्त नहीं कहना पड़ता, वो इरादा फरमाता है और वो चीज हो जाती है। समझ आई बात? तो हम हमारे सिर्फ समझाने के लिए ये बात है, वक़द खलकतु का मिन कबलु वलम तकु शैया। और ये उसके लिए मुश्किल भी कैसे होगा, तो उसने तुझे भी तो पैदा किया इससे पहले, जबकि तू कोई चीज नहीं था। सूरह दहर में आता है ना, लम यकुन शैय मज़कूरा, हल अताल इंसान मिन दहर लम यकुन शैय मज़कूरा। तो एक इतना ही जमाना इंसान पे ऐसा गुजरा कि वो कोई काबिल कदर चीज ही, काबिल जिक्र चीज ही नहीं था। नहीं, मैं और आप 100 साल पहले क्या थे, कहाँ थे, कौन जानता था हमें, कहीं पे भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, हमारा कोई जिक्र ही नहीं था, हम कोई चीज ही नहीं थे। इवन हमारे माँ बाप से पूछते वो भी नहीं जानते थे। तो इंसान, तमाम इंसान जो है ना, वो एक इसी तरह एक नाकाबिले जिक्र चीज होते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला उनको वजूद दे देता है, उनको क्रिएट करता है। अब ये देखे, अल्लाह ताला ने फरमाया आप भी तो कोई चीज नहीं थे, अल्लाह ने आपको भी तो पैदा किया, तो उसको भी पैदा कर दे। अल्लाह हू अकबर। इसी तरह हर इंसान अपनी पैदाइश से साल भर पहले भी पूछें कहाँ होता है, कहीं भी नहीं। अल्लाह हू अकबर। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे पैदा कर दे, जब चाहे पैदा कर दे। और ये भी देखें, इस पूरी टाइम लाइन में जितनी यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक की टाइम लाइन में ना, हम, मैं और आप, एक बहुत ही माइन्यूट सा टाइम लाइन अगर आप बनाएंगे ना, उसमें एक माइन्यूट से टाइम में हम दुनिया में आए और चले गए। ना हमारे आने से पहले हम कोई काबिले जिक्र चीज थे, ना जाने के बाद कुछ रहेंगे। इसको पता भी नहीं होगा कि ये बंदियां कोई आई थी, कोई पढ़ती थी, कोई यहाँ पे चली थी, कोई इन घरों में रही थी। फिर भी हम अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट समझते, जैसे मेरे बगैर तो दुनिया ही नहीं चलनी, मैं ही हूं तो सारे काम हो रहे हैं। औरत अपने घर में अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझती है, मर्द अपनी फैमिली में खुद को सबसे इंपॉर्टेंट समझता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं और कोई कोई उनकी बात ही बाकी नहीं रह जाती। कुछ अरसे तक यादें भी रहती हैं, लेकिन फिर यादें भी मिट जाती हैं, क्योंकि याद करने वाले भी मिट जाते हैं। तो ये जो बहुत खुद को समझना है ना, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं, इतनी सी एक डॉट के बराबर टाइम में हम आए हैं, वो हमें बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो वो बहुत छोटा टाइम है, वाकई बहुत छोटा टाइम है, जिसके अंदर हम आए और चले भी जाना उसी के अंदर। और अब तो जिंदगियां वैसे ही बहुत शॉर्ट हो गई हैं, बहुत शॉर्ट, उसमें अपने आप को इतना ज्यादा अपने बखेड़े इतने फैला लेना, अपने कामों को इतना फैला लेना कि सिमटे ही ना, जाने का वक्त आ जाता है, लेकिन इनके इंसान की प्लानिंग जो होती है ना, वो इतनी लंबी है कि उसको लगता है पता नहीं कब तक मैंने रहना है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो तुम भी तो कोई चीज नहीं थे, ऐसा करिया, तो इसमें हैरानगी की क्या बात है, अल्लाह के लिए तो बहुत आसान है। तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला के लिए ये बहुत आसान है, जो भी ऐसे जोड़े जिनको औलाद नहीं है और वो औलाद चाहते हैं, या जो भी कोई ऐसे मसले में है जिनको लगता है कि ये कैसे होगा, ये कभी सही नहीं हो सकता, तो वो ये बात याद रखे, काला रब्बू का हुआ अलैया हय्यिनुन, तेरे रब ने फरमाया कि ये उसके ऊपर बहुत आसान है। इस चीज का यकीन जब आ जाए ना, तो फिर इंसान दर दर नहीं जाता, उससे मांगू, उससे मांगू, उससे कह दू, उधर धागा लगा दू, उधर चादर चढ़ा दू, उधर देख दे दू, तब मेरे काम बनेंगे। जब उसको पता है कि वो जो रब है ना, उसके लिए बड़ा ही आसान है, सब काम ही बहुत ही आसान है, हय्यिन, बहुत ज्यादा आसान। देखिए, किसी जोड़े का मुझे पता चला उनको 18 साल के बाद औलाद हुई। अब इंसान सोचता है 18 साल हो गए, यहाँ पे लोग 2-3 साल बाद ही मायूस होने लगते हैं, हाँ यार नहीं हुई तो पता नहीं, पता नहीं होनी, 5 साल हो गए हमारी शादी को अभी तक औलाद नहीं है, 18 साल बाद हुई। और इनको देखें तो सारी जिंदगी नहीं हुई थी और अब अल्लाह ताला ने अता फरमा दी, जबकि कोई भी ऐसा सबब नहीं, दुनियावी तौर पे देखे ना तो ऐसा कोई सबब नहीं नजर आता। इतने बूढ़े आदमी और ऐसी औरत, जवानी में तो उसको हुआ नहीं, अब उसके तो मेनोपॉज की भी उसे भी औरत गुजर जाती है, कहाँ पहुंच जाती है जो इतनी बूढ़ी हो। वो भी बूढ़ी थी जाहिर है, वो तो कोई 20 साल की तो नहीं थी। और फिर दूसरे के वो सारी जिंदगी उनकी औलाद ही नहीं हुई, जिस वक्त उनके अंदर ताकत थी, जब इस्तात थी, जब किसी भी औरत को औलाद होने की उम्मीद होती है, वो भी गुजर चुकी है, तब हो रही है, तो फिर कौन मायूस हो सकता है। ये बातें हमें बताती हैं कि जब सबब खत्म हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला के काम वहां से शुरू हो जाते हैं। वो यकीन खुद को दिलाने की जरूरत है। जब असबाब की दुनिया भी खत्म हो जाती है, जहां पे हमें लगता है कि अब कोई भी तरीका नहीं रह गया। और मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी मेरी अभी तक जिंदगी गुजरी है, मैंने देखा है वाकई कई चीजों को मैंने अपने सामने देखा है, कि जिनसे मैं सोचती थी ये कैसे होगा, अल्लाह ताला करके दिखाता है। फिर इंसान बाद में हक्का बक्का रह जाता है कि अल्लाह हम तो ऐसे सोच रहे थे ये कैसे होगा और ये हो गया। कईयों के हालात के बारे में सोचा, इनके हालात कैसे बदलेंगे, नहीं बजाहिर देखने में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इनके हालात बदल सकते हैं कभी, लेकिन वो बदले और अल्लाह ने दिखाया। अल्लाह बताता है देखो मैं बदल सकता हूं, और अल्लाह के लिए आसान होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है। जब हमारे लिए मुश्किल होता है ना, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं अब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी अपनी अकल में नहीं आ रहा होता। लेकिन हमारी अकल कितनी महदूद है, उसके अंदर हम सोच रहे हैं ना, अल्लाह ताला के यहाँ नहीं मुश्किल। तो ये सूरत निकालती है मायूसी से, ये सूरत होप दिखाती है, ये सूरत उन हालात के अंदर होप दिखाती है जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो, कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है और वो कर सकता है। कौला रब्बी जाली आया, तो अब इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना, कहते हैं अल्लाह ताला तो कोई निशानी दिखा दे। इसलिए कहते हैं देखिए हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जब कोई औरत कंसीव करती है तो उसके बाद कुछ टेस्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है हाँ भाई अब प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव कर लिया इसने, तो अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा, कोई निशानी बता दे। काला आया तू कर अल्लाह तू कर ली मन्ना सा सला सला यालन सबिया, कि तू ना बात कर सकेगा लोगों से 3 रातें लगातार, रातों की भी ये सिफत हो सकती है कि सबिया लगातार 3 रातें, और दूसरा इसका माना ये है सबिया अच्छा भला होने के बावजूद आप नहीं, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बीमारी हो गई है या आपको कोई लुकनत हो गई है जुबान में या आपके कोई और प्रॉब्लम हो गया सेहत में, नहीं बीमारी की वजह से नहीं होगा, वैसे ही आपसे बात नहीं की जाएगी, ठीक है, तो ये निशानी होगी कि इसका मतलब है कि हमल ठहर गया। फखरजा अला कौमिही मिनल मेहराब, तो वो निकले अपनी कौम की तरफ मेहराब में से। अब मेहराब से आए, मेहराब वो जगह थी, मेहराब हर्ब से है, इसम ज़र्फ़ है मेहराब, हर्ब हर्ब जंग को कहते हैं ना, तो मेहराब यानी जंगे ना ऊंची जगह पे जाके की जाती थी, वहां से दुश्मन के ऊपर तीर बरसाए जाते थे या कुछ है, तो मेहराब उस जगह को कहते हैं जो ऊंची हो, तो इनकी इबादत की जगह थी। तो यहां पर यहां से ये निकले, फ औहा इलैहिम, तो इशारा किया उनकी तरफ, किनकी तरफ, लोगों की तरफ, अन सब्बहू बुकरतन व अशिया, कि तस्बीह करो सुबह और शाम, कि आप भी तस्बीह करें सुबह शाम, तस्बीह करें अपने रब की, उनको भी साथ मिलाया कि आप तस्बीह करें। और आले इमरान में भी आता है कि जब उन्होंने फरमाया कि या अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी कर दे, तो फरमाया قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام, वहां पे अय्याम आया, यहाँ पे लयाल आया, बात एक ही है, इल्ला रमजा, मगर साइन लैंग्वेज या इशारों की जबान में आप बात कर सकेंगे, और वैसे आपसे बात नहीं हो सकेगी। वद्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इबकार, वहां पे भी अशी और इबकार का लफ्ज आया। यहाँ पे बुकरा तो वहां अशिया है ना, वहां पे इस तरह है कि ए जकरिया आप तस्बीह करें सुबह शाम। इससे उलामा कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी औलाद हो तो वो अल्लाह की तस्बीह सुबह और शाम किया करें, और तस्बीह के अंदर सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह इस तरह, ये सब है। और ये वैसे भी तस्बीह करनी चाहिए, मगर जिनको कोई ऐसी अल्लाह ताला के हाँ कोई ऐसी चीज को मांगना चाहते हैं तो वो खास तौर पे इसका इतमाम करें। एक किसी के बारे में आता है कि वो सुबह में कई घंटे तक तस्बीह करते थे, तस्बीह तस्बीह किए जाते थे। तो उनके शागिर्दों ने, वो कोई एक शेख थे, उनके शागिर्दों ने कहा कि आप इस टाइम पे लोगों को पढ़ा लिया करें, आप इस टाइम पे कोई लिखने का काम कर लें कि आप तस्बीह करते रहते हैं। फरमाया ये मेरी ताकत है, इससे मुझे ताकत मिलती है, इसकी वजह से मैं अपने दिन के सारे काम कर पाता हूँ। तो इसका मतलब इंसान को सुस्ती आए या वो वीक फील करे तो फिर वो तस्बीह किया करे, और फिर दुआ भी है ना, लम्मिन याउदुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज़्ज़ी वल कसल, सुस्ती से भी और कमजोरी से, बिचारगी की हालत से अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखना। ठीक है, तो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करें। और ये भी हमें पता चलता है कि जब इंसान को कोई खुशखबरी हासिल हो तो बजाय ये नाचने के और आपे से बाहर होने के, तो उसको क्या चाहिए, तस्बीह किया करें। तस्बीह अल्लाह ताला की क्या होती है, अल्लाह की तारीफ है ये, अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक करार देना है तस्बीह में। जैसे मैंने आपको सुबहान का माना भी बताया ना, तस्बीह हुई है कि अल्लाह ताला को पाक करार दे। तो इसलिए खुशी के लम्हात में जब खुशखबरी मिले ये करना चाहिए।